نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 ہے یہ اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کا ذکر کرنا اور توبہ ان دونوں کا بھی دعا سے کوئی تعلق ہے بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ دعا مانگوں یا ذکر کروں مثلاً آپ فارغ بیٹھے ہیں گاڑی میں جا رہے تھے کچھ اور کام نہیں تھا آپ کہتے ہیں چلو ایسا کرتی ہوں کہ کچھ ذکر کر لوں اتنے میں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں کوئی دعا کر لوں دعا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ذکر کر لوں کیا دعا بہتر ہے یا ذکر بہتر ہے یا ذکر کیا جائے تو دعا ہوتی ہے ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ دعا پہ تو ہم تھوڑی سی باتیں کر ہی چکے ہوئے ہیں لیکن ذکر کو اگر ہم دیکھیں کہ ذکر ہوتا کیا ہے آپ ایک لمحے کے لیے ذکر کے وہ تمام مروجہ طریقے بھول جائیں جو عموماً لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں کچھ مل کے ذکر کرتے ہیں کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کچھ انفرادی طور پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ذکر یاد کا نام ہے عربی زبان میں یاد کو ذکر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو یہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے تو اب اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو لوگ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں اور ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کریں اور بعض اس حد تک شدت برتتے ہیں کہ کہتے ہیں تسبیح ہاتھ میں ہے نہیں تو ذکر کر ہی نہیں سکتے تو یہاں یاد یہ مراد نہیں ہے اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا اسلام کا مزاج کیا ہے کہ انسان اپنے قول اپنے فعل اور اپنے حال سے اللہ کی یاد کو قائم رکھے آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ آپ کا بھی ذکر ہو رہا تھا یا بھی میں آپ کو یاد کر رہی تھی کیا معنی ہوتا ہے کبھی آپ کے دل میں اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے اتنے من کا فون آ جاتا ہے کبھی آپ اس کے بارے میں کسی دوسرے سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا فون آتا ہے تو کیا اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا نام تسبیح پہ پڑھ رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا سائمہ 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 ایسا نہیں ہوتا نا تو بس وہی بات ادھر رکھیے کہ ہم جب اللہ کو یاد کریں یا اللہ کا ذکر کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر حال میں تمہیں اللہ نہ بھولے بلکہ امام ابن تیمیہ ابن قیم میں سے کسی کا قول ہے کہ مومن تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے حتیٰ کہ کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے دوران بھی اس کو اللہ یاد ہوتا ہے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی پڑے گی ایک چپت میرے سر پہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط کیا تو نیکیاں کر کے اللہ کو یاد رکھنا یہ تو ہے ہی لیکن گناہ کے دوران بھی بندے کو اللہ یاد رہے اور اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کلمہ سکھا دیا گیا کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بندہ مومن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے کوئی نعمت ملی الحمدللہ الحمدللہ تو الحمدللہ کیا اللہ کی یاد نہیں ہے یہ اللہ کا ذکر ہے کوئی اچھی چیز دیکھی آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو میرے رب نے چاہا کوئی وعدہ کیا کسی کو امید دلائی تو کہا انشاء اللہ انشاء اللہ تو بندہ مومن کی تو ڈکشنری میں لفظ اللہ کثرت سے ہوتا ہے اس کی تو سرچ میں سب سے اوپر لفظ ہی اللہ کا ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا کبھی زبان سے کیا جائے گا مسنون اذکار کو پڑھ کر کبھی معاملات میں اللہ کو یاد رکھا جائے گا دوسروں پہ ظلم نہ کر کے حقوق العباد پورے کر کے کبھی زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوگا کبھی روزے کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوگا کبھی حج کے ذریعے ماں باپ کے حقوق بچوں کے رشتہ داروں کے ہمسایوں کے یتیموں کے لین دین میں کاروبار میں ملازمت میں ہر معاملے میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا حدیث ہے کہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ یہ چار لفظ ہیں اگر آپ یاد رکھ سکیں دہرائیں میرے ساتھ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ کیا مطلب ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کا ذکر کیا کتنی خوبصورت روایت ہے تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی یاد کا نام ذکر ہے हर वक्त हर हाल में जब अल्लाह को याद रखेंगे तो हमारे मामलात खुद ही खूबसूरत होंगे। सूरह जुमा में आयत 10 में आता है, सूरह जुमा आयत 10 में आता है, वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी, जिहाद करने वालों में सबसे ज़्यादा अजर पाने वाला कौन है? आपने फरमाया, जो इनमें से कसरत से अल्लाह को याद करने वाला। फिर इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने वालों में सबसे ज़्यादा अजर किसका होगा? आपने इरशाद फरमाया, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह को याद रखेगा। यानी ये नहीं कि रोज़ा रख के भूल ही जाए कि रोज़ा था और नाफरमानी के भी काम कर रहा है और ज़ुबान से गलत बातें बोल रहा है, यानी उसकी ज़ुबान भी अल्लाह का जिक्र करेगी और उसके आमाल भी करेगा। इसी तरह उन्होंने नमाज, ज़कात, हज, सदका सब के बारे में पूछा कि अल्लाह के नबी, इनमें से कौन सा अमल बेहतर है? तो आपने कहा कि जो इनमें से अल्लाह को कसरत से याद रखने वाला है। ये मुस्लिम अहमद की रिवायत का खुलासा था। तो क्या बात पता चली कि ज़िक्र कोई लफ्जी कार्रवाई नहीं, ज़िक्र कोई जंतर मंतर नहीं, ज़िक्र कोई छू मंतर भी नहीं है। किसी मुश्किल में पड़ने पर यह ज़िक्र 1 लाख, 100 बार, 1.25 लाख, 313 बार, ये कोई ज़िक्र नहीं होता। बंदा है मोमिन तो इस दुनिया से इस हाल में जाए कि वो अल्लाह की याद में मशगूल हो। अल्लाह के नबी से एक मौके पे पूछा गया कि अल्लाह के नबी, सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया कि तू इस दुनिया से इस हाल में रुख्सत हो कि तेरी ज़ुबान अल्लाह की याद में मशगूल हो। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। फिर सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि ज़िक्र करने वाले और ना करने वाले ऐसे ही हैं जैसे ज़िंदा और मुर्दा। यानी ज़िक्र करके दिल भी ज़िंदा होता है, ज़ुबान भी ज़िंदा होती है, तकवा ज़िंदा होता है, अल्लाह की मोहब्बत ज़िंदा होती है। और इसी तरह जिस दिल में अल्लाह की याद और मोहब्बत नहीं होती, वो दिल मुर्दा होता है। फिर आप देखिए कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवायत है इस बात को समझने के लिए कि ज़िक्र और दुआ का ताल्लुक क्या है। सही बुखारी की रिवायत है कि शैतान इब्ने आदम के दिल पर बैठा रहता है। इमेजिन करें, मुझे तो ऐसे तस्वर में आता है जैसे कोई चीज़ और वहाँ एक काला सा कौवा बैठा हुआ है, दिल गोश्त का एक टुकड़ा है, लोथड़ा है, और उसके ऊपर शैतान बैठा हुआ है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, खनासा भाग जाता है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता अल्लाह की याद को, अल्लाह के ज़िक्र को। और जो ही इंसान अल्लाह से गाफिल होता है, अब ये नहीं मतलब कि ज़ुबान से ज़िक्र छोड़ दिया, गाफिल हो गया, भूल गया, ऐसे ही दिल में ख्याल आ गए, जिसको कहते हैं लाशौरीपन की ज़िंदगी हुई, पर मैं जूँ ही इंसान गाफिल होता है तो वो दोबारा वापस आकर फवसवसा, फिर वसवसे डालता है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल हों, तो हर लम्हे कान्नक तराहू, अल्लाह कुछ देख रहे हैं और अल्लाह मुझे देख रहा है। ज़िक्र की बेहतरीन कैफियत यह है कि बंदे को हर जगह हर वक्त अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हो। आप इंसानी मिसालों में देखिए कि हम किससे मांगते हैं। यानी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और एकदम मुझे पानी की ज़रूरत हो तो मैं किससे मांगूंगी? मैं इनसे कहूँगी ना कि उल्फत पानी ला दीजिए, है, या आपसे कह दूँगी, या आपसे कह दूँ, क्या ये पॉसिबल है कि जो शख्स इधर मौजूद ही नहीं, मैं उससे कहूँ कि पानी ले आओ? या कोई ऑफिस में बैठा है या कोई बाहर बैठा है तो मैं कहूँ पानी ला दूँ? चीखना पड़ेगा ना, बस अब आप इस बात को लाइए इधर। जिस बंदे के दिल में अल्लाह की याद होती है ना, उसका उसको जूदी का तस्मा भी चाहिए होगा तो वो कहेगा, अल्लाह जी मुझे देना, या अल्लाह मुझे ये देना। किसी इंसान से उसको काम होगा ना, तो उस इंसान से ज़्यादा करीब वो अल्लाह ताला को महसूस करेगा। वो कहेगा, अल्लाह ताला आप इसके दिल में डाल दीजिए कि मेरा ये काम कर दे। ये कैफियत फिर तकवा में ढलती है। यही कैफियत जो है वो वाकई इंसान को फिर चलते फिरते अल्लाह ताला से बातें करने वाला बनाती है। तो दुआ के लिए आप कोई हाथ उठाते हैं, कुछ ज़ाहरी रस्मी काम करते हैं, इसकी भी तलब नहीं। ये एक अलग थोड़ा सा टॉपिक है, इसी में इसको हम देख सकते हैं कि बाज़ लोग दुआ के लिए एक बड़ा प्रोटोकॉल समझते हैं। पहले वज़ू करो, फिर उसके बाद क़िबला रुख बैठो, फिर हाथ उठाओ, फिर यूँ करो, फिर यूँ करो। बस लोगों को मैंने देखा है, यानी ये बहुत पहले की बातें ना समझी की जो लोगों की बातें होती है, कोई यूँ दुआ मांग रही थी, ये देखिए जैसे इस वक्त मेरे हाथ है कि दोनों हाथों के बीच में गैप है, तो किसी दूसरी खातून ने, और ये दीनी महफिल थी, उनको टोका कि देखो यूँ ना मांगो, यूँ मांगो, क्यों? कहने की वो दुआ बीच में से गिर जाएगी। इमेजिन कीजिए, कुछ लोगों की बात मैंने सुनी, वो कहते हैं जब आप यूँ दुआ के लिए हाथ खड़े हो ना करें, तो ये देखिए ये जो दो लाइनें नहीं, कहते हैं इसको मिलाओ, ये बेबनती है, वे बिस्मिल्ला। और एक तो मेरी हैरत गुम हो गई जब किसी ने कहा, यंग लड़की थी, अभी शादी नहीं उसकी हुई हुई थी, तो कहने लगी कि मुझे किसी ने कहा कि तुम यूं हाथों को करो, ये देखिए अब आप तो देख रहे हैं, अब जो सुनेंगे वो सिर्फ इमेजिनेशन में करें कि हथेलियां अंदर है ना, ये जो हमारी इसकी बजाय हथेलियाँ बाहर, और ये जो बाहर किसी से इसको उल्टे हाथों से, और जो कहती हैं कि मुझे किसी ने बताया कि जो बड़ी ख़ास दुआ ना वो इस तरह उल्टे हाथों से मांग के यूँ फेरो। अब बताइए कि हमने अल्लाह ताला को क्या समझा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ मसनून है, जहाँ अल्लाह के नबी ने कहा हाथ उठाओ उठा सकते हैं, दुआ के बाद हाथ पे मुँह पे फेरना। इंशाल्लाह हम जो किताब शुरू करेंगे इस इन टॉपिक्स के बाद दुआ के मसाइल, उसमें ये सारे मसाइल आएंगे कि दुआ मांगने के आदाब क्या हैं, क्या फ़र्ज़ है कि नहीं। और बाज़ लोग कहते हैं जी ये दुआ ही नहीं मांगते, ये तो दर्स के बाद उठ जाते हैं, ये दुआ ही नहीं मांगते, आपको क्या पता कितनी मांगी। और बाज़ लोग सोचते हैं कि दुआ अरबी में मांगी तो वो उर्दू में नहीं मांगी, वो दुआ ही नहीं हुई। बाज़ दफ़ा लोग मुझे कभी कहें ना दर्स के एंड पे दुआ करा दें, तो मैं सोचती हूँ कि जितनी देर में दुआ करानी है, हो सकता है मौजू नहीं पूरा हुआ तो वही बात दर्स में ले लीजिए, ऐड कर दिया जाए, दुआ के वक्त को भी उसमें ऐड कर लें। तो बाज़ लोग इससे बड़े शोशे उठाते हैं कि जी ये तो दुआ नहीं करते बाद में। तो मैंने कहा ये सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये क्या हदीस में आता है कि जिस महफिल के इख्तिताम पर यह दुआ पढ़ ली जाए अल्लाह ताला वहाँ का पूरा अजर देता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे मुगालते हैं कि दुआ के लिए कोई ख़ास प्रोटोकॉल है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन खान मोमिन का शेर है, कुछ इसी तरह के ओल्ड शोरा में थे कि तुम तो मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता, और जब कोई दूसरा होता है तब भी अल्लाह ही पास होता है। तो दिल के अंदर नहीं है अल्लाह, लेकिन अल्लाह की याद अल्लाह का जिक्र दिल में है। बस अब हम ये जो कह देते हैं ना कि दिल में अल्लाह बसता है, कैसे? आपका दिल इतना बड़ा है, जिसकी कुर्सी इतनी बड़ी है, जिसका अर्श इतना बड़ा है, जिसके ज़मीनों आसमान इतने बड़े हैं, वो हमारे एक मुट्ठी बड़े दिल में कहाँ पूरा आएगा। मुराद है कि दिल में अल्लाह की याद बसी हुई है। तो बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह की जब याद होती है, यही जिक्र में ढलती है, यही दुआ में ढलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको कुरान के पढ़ने ने दुआ से रोक के रखा, अल्लाह उसको मांगने वाले से ज़्यादा देता है। आप ज़रा इमेजिन तो करें, कैसे? दुआ मांगने वाला तो दुआ मांग रहा है ना, और जो अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, किसकी सुनी जाएगी? मसलन आप इसको इस तरह समझिए, चलिए एक और मुगालते का हम इजाला कर लेते हैं इसी वक्त, कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में लग जाता है ना, अल्लाह के कामों में, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, जो भी वो कर सकता है, उसके से इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने लिए दुआ मांगे, अल्लाह उसको दुआ मांगने वाले से ज़्यादा देता है। कैसे? इसको हम एक मिसाल से समझेंगे। आप देखिए कि एक खातून है, उसका बच्चा है। अब एक गरीब औरत आती है उसके घर में और उसको कहती है मुझे कुछ दे दो बाजी, ये दे दो बाजी, ये बाजी वो, यानी भीख मांगती है या मांगती रहती है उससे कुछ दे दो। एक दूसरी औरत है जो आते ही उस औरत के बच्चे को उठा लेती है, उसकी देखभाल करती है, वो रोता है उसको प्यार करती है, उसके उसका मुंह धुलाती है, उसको कपड़े बदलाती है, उस बच्चे की केयर करने लगती है। अब एट द एंड ऑफ द डे वो बेगम साहिबा किसको देना पसंद करेंगी? एक जो उससे मांग रही है और दूसरी जो उसके बच्चे की हिफाजत कर रही है। अब याद रखिए ये जुमला कि अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, नाउज़ बिल्ला, ना अल्लाह ताला बेगम साहबा से मिसाल रखता है ना बच्चे से। लेकिन बात हमारी अकल में आने के लिए कि जब आप उस औरत ने तो उसके बच्चे की हिफाजत की तो उस औरत ने उसको ज़्यादा दिया मांगने वाले से। हम जब अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए चल पड़ते हैं ना, हम जब अल्लाह के बंदों की हिफाजत के लिए चल पड़ते हैं, जब हमें अपनी ज़ात से ज़्यादा इंसानियत प्यारी होती है, तो वही मिसाल है कि अल्लाह मांगने वालों से ज़्यादा देता है। बाद लोग सिर्फ इसलिए दीन की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, कहते नहीं वो हमारी दुआओं का वक्त छूट जाता है, फिर वो हम वजीफ़ा करते थे इसलिए हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। कई लोग सिर्फ वजीफे के लिए कुरान का कोर्स नहीं कर पाते, वो मैंने एक सूरत शुरू की भी है पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़नी, सूरत फलां इतनी दफ़ा पढ़नी, लिहाजा तर्जमा नहीं मैं याद कर सकती। तो पूरे शरह सदर के साथ आप अगर कुरान पढ़ रहे हैं ना, तर्जमा याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, फ़ौरन एक लम्हे एक लिए चुपके से कह दिया करें अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला ये मैं आपके दीन की को सीखने के लिए कर रही हूँ, इस वक्त में आप मेरी वो सारी दुआएँ कबूल कर ले जो मेरे दिल में। तो दुआ को रस्मी चीज़ नहीं है, दुआ तो दिल से निकलती है। इसी तरह हम इसको साथ ही अगर देखें या मरहले एक अलग टॉपिक से देख सकते हैं हम लोग कि दुआ और तौबा क्या है, इसको नेक्स्ट, और इंशाल्लाह फिर ये हमारे इंट्रो का आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम अल्लाह की तौफीक से शुरू करेंगे किताब को। आज जो बात हुई इसके मतलब कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसी से आप देखें ना कि हदीस में आता है कि अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। गाफिल दिल की दुआ कैसी होती है? एक तो अल्लाह से गाफिल है, सर कहीं, सोच कहीं है, कान कहीं लगे हुए हैं, और साथ कह दे अल्लाह ताला ये भी दे दे। अब किसी को भी इधर बुलाएं और आप खुद गाफिल हो, तो वो अगर आपकी जवाब में हाँ कह भी देगा तो आपको सुनाई तो नहीं देगा ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि गाफिल दिल से मुराद ये है कि जो बंदा मांग रहा है उसको खुद ही नहीं पता मांग क्या रहा हूँ, मिल भी गया तो क्या होगा। और यकीन करें हमारी अहदीना सिरातल मुस्तकीम की दुआ हर नमाज में कुछ इसी कैफियत की होती है। खुद नहीं पता कि क्या मांगा है। हिदायत मांगने का दावा तो किया लेकिन मिलने लगती है तो चीखने लगते हैं, उसके तकाजे नहीं निभा सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें बेहतरीन तरीके से अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह को याद रखने वाला और दुआएं मांगने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।